23वीं आयत से आज बात शुरू हो रही है और ये पूरा रुकू इसमें कुछ 15 अहकाम हैं और कुरान में मैं समझता हूँ ये एक सूरत है जहाँ इतने ज्यादा अहकाम एक जगह आ गए हैं, वरना अहकाम आमतौर पर पूरे कुरान में फैले हुए हैं, ये एक मुकाम पे इतने अहकाम और बड़े अहम अहकाम हैं। और एक गुजारिश ये है कि जब कुरान के इन अहकाम को हम सुने तो सुनने के बाद हम अपना जायजा लें कि जिन जिन से इस किस्म की नाइंसाफी हुई है वो हम नाइंसाफी को दूर करने की कोशिश करें। जैसा वालिदैन के बारे में बात आई है, जो बच्चे हैं वालिदैन से जो बदतमीजी करते हैं, आज ये बात सुनने के बाद वो घर जाएं और वालिदैन से माफी चाहें और अपना रवैया ठीक कर लें तो फिर दर्द कुरान का असर होगा। ये इंफॉर्मेशन और नॉलेज के लिए सुनना ये कोई बात समझ में नहीं आती। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वखज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु, पहला हुक्म है कि और अल्लाह ताला ने ये फैसला किया, ये हुक्म किया कि यानी अल्लाह ताला आपका पालने वाला, आपके मालिक और आपके पालने वाले ने ये हुक्म दिया कि सिवाय उसके किसी और की इबादत मत करो। जरा यहाँ बहुत अहम चीज है, इबादत क्या चीज है, सिवाय उसके किसी और की इबादत मत करो। अब देखिए सूरह ज़ारियात में गालिबन 51 सूरत है, 56 आयत है, वमा खलकतुल जिन्नी वल इंसी इल्ला लियाबुदून, कि मैंने जिन और इंसान को पैदा नहीं किया सिवाय इसके कि वो मेरी इबादत करें। तो इबादत का जो मफहूम है, जो मतलब है, अरबी जबान में अब्द जो है गुलाम को बोलते हैं, गुलामी करना, यानी कुरान पे वैसे ही अमल करना जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। नमाज इबादत का एक हिस्सा है, नमाज मुकम्मल इबादत नहीं है। ये हम लोगों में थोड़ी सी गलत फहमी है क्योंकि उसका फारसी में तर्जुमा कर लिए हम परस्तिश, तर्जुमा करके हम समझे कि भाई इबादत का मतलब परस्तिश, पूजा करना, इबादत का मतलब गुलामी करना, अल्लाह ताला के जितने अहकाम थे उन पर चलना। अच्छा, अब यहां मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने जिनों और इंसानों को पैदा ही इसलिए किया कि वो अल्लाह ताला की गुलामी करें। इंसानों के लिए बात आ गई कुरान में कि कुरान पे अल्लाह ताला की गुलामी क्या है, कि कुरान पे वैसे ही अमल करना जैसे कि अल्लाह ताला ने बताया है। अब ये मकसद हयात सूरह हूद की 7वीं आयत में फिर आया कि हमने आसमान और जमीन को 6 दिन में पैदा किया जबकि हमारा अर्श पानी पे था, ताकि देखें मन एहसाना अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से कौन है जो बेहतरीन अमल करता है। तो बेहतरीन अमल क्या है, अल्लाह ताला की इबादत। देखिए क्लैश नहीं हो रहा है कुरान की आयत में, मकसद में क्लैश नहीं हो रहा। अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान पैदा किए ताकि हमको आजमाएं, क्या आजमाएं, कि हम में बेहतरीन अमल कौन करता है। तो बेहतरीन अमल क्या है, अल्लाह ताला की गुलामी करना, कुरान की इत्तेबा करना, कुरान की पैरवी करना वैसे जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा बताया अपनी मर्जी से। तो पहला हुक्म आ गया कि सिवाय अल्लाह के किसी और की गुलामी मत करो। उसके बाद फौरन दूसरा हुक्म आ रहा है, वो बिल वालिदैन एहसाना, और वालिदैन के साथ एहसान करो। फिर एहसान के लफ्ज को समझिए आप, इससे पहले भी बात आई कि अरबी कुरान में 3 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, अदल, जुल्म और एहसान। अदल क्या है, इक्वल टू, मैं आपसे 50,000 रुपये लिया था, कभी आपको जरूरत पड़ी मैं 50,000 रुपये आपको दिया, ये अदल है। मेरे पास पैसे थे, आपको जब जरूरत पड़ी मैं अनजान हो गया, ये जुल्म है। एहसान क्या है, आपने मुझसे कहा कि भाई मुझे 50,000 की जरूरत है तो मैंने कहा ये 1,00,000 रुपये रख लीजिए आप क्योंकि आप मेरे वक्त पे काम आए थे, ये एहसान है। तो बिल वालिदैना एहसाना का मतलब क्या हुआ कि वालिदैन ने हमसे जो कुछ किया है उससे ज्यादा तुम उनसे करो। नॉट द क्वेश्चन ऑफ ओनली रीपेइंग देम, डू एक्सेस गुड टू देम। एक एक चीज है, अब जिनके वालिदैन जिंदा है उनके लिए तो अहकाम आ रहे हैं, अब जिनके वालिदैन का इंतकाल हो गया उसके लिए पिछले इतवार को एक हदीस आ गई थी कि जैसे ही इंसान मरता है उसका अमालनामा बंद हो जाता है सिवाय इसके कि कोई सवाब जारिया का काम किया हो, बोरवेल खुदा दिया हो, लोग पानी पी रहे हैं, इल्म की किताबें छोड़ के गया है, लोग उससे फायदा उठा रहे हैं, या साले औलाद जो अपने मरे हुए वालिदैन के लिए दुआ करती है। तो ये इसमें यह भी बात आ जाती है, मेरे जहन में यह है कि जिंदा मुर्दा सभी आ जाते। उसके बाद में इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदहुमा और किलाहुमा वला तखल्लुहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा। और ये अगर तुम्हारे पास बुढ़ापे तक पहुंच जाएं इनमें से एक या दोनों, तो उनसे उफ तक न कहो और उनको झिड़की मत दो। देखिए एक खास बात है, ये उफ कब होता है? आप बैठे आज टांगा लंबे करके बैठे हुए, बाबा बोले मियां जरा पानी तो पिलाओ, ये है उफ। यानी इसकी तक इजाजत नहीं है। आप कुरान के अहकाम पे जब उतर के आ जाएंगे तो इसकी तक इजाजत नहीं है कि आपके मुंह से उफ निकले वालिदैन के लिए, क्योंकि आपको पालने के वक्त इन्होंने उफ नहीं कहा। जब आप छोटे थे गिलाजत कर लेते थे, माँ बाप जो है आपके थालियां बदलते थे, कमा के लाते थे, खिलाते थे, पेट में लेके फिरे, रातों में जागे, डॉक्टरों के पास लेके गए, खर्जे करे, हाँ यहाँ तक के गलत तरीके से कमा के एजुकेशन दिलवाए, आज आप अपने बस में खड़े रह के जो है वही वालिदैन को आप इस किस्म की झुड़की से बात कर रहे हैं। ये हमारा माशरा हो गया है आजकल। तो भी ये आयत सुनने के बाद हमें कुछ फर्क आना चाहिए। देखिए एक दर्स में ऐसी हुआ था, ऐसी कोई आयत आई थी तो एक बच्चे के वालदा मिले और मिलके बोले भाई बड़ा अच्छा है ये सिलसिला शुरू हुआ है। वो बच्चा आया दर्स से और आके पैरों पे गिर गया, बोले मुझे माफ कर दीजिए। क्या है बेटा, क्या हो गया तुमको, क्या माफ कर, बड़ा बदतमीज बच्चा था। तो बोले ये असर होना है। तो यहां ये बात है कि हम अपना जायजा लें कि अल्लाह ताला ये हुक्म दे रहा है कि उनको उफ तक मत कहो, उनको झिड़को मत। अब वो उसका ये वाव है तफसीरी मालूम होता है, झिड़को मत का मतलब क्या है, वखुल्लहुमा खौलन करीमा, और उनसे ऑनर इज्जत की बात करो। देखिए आप क्या चीज थे आप वालिदैन के सामने, उठा के फेंक देते आपको तो आप जितने बड़े होते भी नहीं थे। क्या क्या नहीं वालिदैन तकलीफ उठाए। देखिए अल्लाह ताला की इबादत के बाद वालिदैन का मुकाम आ रहा है। तो बोले इनसे उफ तक मत कहो, इनको झिड़की मत दो, बल्कि इनसे इज्जत से बात करो, ऑनर से बात करो, लोगों को मालूम हो कि भाई ये वालिदैन। कैसे कैसे वाकया सुनने में आते वालिदैन के साथ जो आजकल हरकतें हो रही हैं। तो मुस्लिम माशरे में ये बात नहीं होना चाहिए। अगर हम कुरान पे अमल करते हैं, कुरान को अल्लाह ताला की किताब मानते हैं और अपने आप को उम्मत मोहम्मदी में शामिल समझते हैं, तो फिर ये हम लोगों में ये चेंज आना चाहिए। वख्फिज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा, और रहम क्या है, तरस खाना। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो रहमान है, फायदा पहुंचाते हैं, कैसा रहीम है बोल के तरस खा के फायदा पहुंचाते हैं, बेनिफिसेंट एंड मर्सीफुल। अंग्रेजी से उर्दू समझ में आई हमारे, इन द नेम ऑफ अल्लाह हु इज दी बेनिफिसेंट दी मर्सीफुल। मर्सीफुल किसको बोलते, तरस खाने वाला, तरस खा के हमको फायदा। तो वालिदैन पे तरस खाकर अपने बाजू जो है उनके आगे झुका दो, आजिजी करो। बाजू झुकाने का मतलब क्या है, बाजू से खिदमत होती है, यानी उनकी खिदमत आजिजी से करो, तरस खा के उनकी खिदमत करो। ऐसा नहीं सुने हजरत मस्जिद में सुने आप लोग बूढ़े हो गए तो आपकी खिदमत करना, बोल के क्या करना, उसूल है मुसलमान है ना, कर रहे हैं बस। नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल हमदर्दी से आजिजी से उनकी खिदमत करो, ये एहसास हो। उसके बाद में उसकी वजह बताई जा रही है, वह खुर रब्बिर हम हुमा कमा रब्बियानी सगीरा, ऐ मेरे पालने वाले, ऐ मेरे पालने वाले अल्लाह, इन दोनों पे रहम फरमा जैसा कि इन्होंने मुझे छोटे से पाल पोस के बड़ा किया। रब्बी यानी पाल पोस के फोस्टर्ड मी, यानी मैं बिल्कुल काबिल ही नहीं था, मैं अपना दूध बना नहीं सकता था शीशी में डाल के। आजकल जो देख रहे हैं ज्यादातर जो है डब्बों के पाउडरों के दूध चल रहे हैं, वो भी जो यानी भाई माँ ही थी जो लगी हुई थी, बाबा थे कमा के लाते थे, तो फिर स्कूल में डला है, पढ़ाए लिखाए, तरबियत किए, हाँ उस्ताद रखे, उस्तादी माँ रखे, अरबी सिखाए, कुरान सिखाए, नमाज सिखाए, यानी पूरी तरबियत जो है वालिदैन की तरफ से हुई। तो मैं छोटा था, जिस तरीके से इन्होंने मुझ पर तरस खा के मुझको बड़ा किया, आप भी जो है इन पे तरस खा के जो है इन पे रहम फरमाइए, ये दुआ हो। अब देखिए ये एक ही हुक्म में इतनी आयत आ गई, उसके बाद में बात मजमून बदलता है। रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम, आपका देखिए यहाँ पूरे रुकू में रब्बी का रब्बुकुम रब का माने आ रहे हैं। अब ये रब अल्लाह क्यों नहीं बोले? एक बात समझना है कि अल्लाह ताला ने यहां अल्लाह का लफ्ज क्यों नहीं इस्तेमाल किया और रब का इस्तेमाल क्यों किया। रब के माने मालिक और पालने वाले के, मालिक और पालने वाले को हक है ये हुक्म देने का, वो हमारा मालिक है, वो हमारा पालने वाला है, उस यानी उस राइट से, उस हक से वो हमको हुक्म दे रहा है कि आपका पालने वाला यानी तुम सबका पालने वाला तुम्हारे नफूस में क्या है, तुम्हारे अंदर क्या है, तुम्हारे ईमान, तुम्हारे जज्बात, तुम्हारे ख्यालात, तुम्हारे एहसासात, सब में ज्यादा जो है तुम्हारा पालने वाला तुम्हारा मालिक जानता है, और कौन जानता है। देखिए सवाल यह है कि कई वक्त हम अपने आप को नहीं समझ सकते, कम से कम मैं कन्फेस कर रहा हूं कि कई मौकों पे मैं अपने आप को एनालाइज किया कि मैं क्यों किया तो मुझे जवाब नहीं मिला, मैं अपने आप को नहीं समझ सका कि ऐसी हरकत क्यों हुई मुझसे, मगर वो अंदर क्या है वो अल्लाह ताला की शान है कि वो समझता है। इन तकूनु सालिहीन फइन्नहु काना लिल अव्वाबीन गफूरा, और अगर तुम नेक काम करने वालों में से हो, नेकी करने वालों में से हो, तो बेशक वो उसकी तरफ पलटने वालों के लिए गफूर है। गफूर का मतलब क्या है कि तुम्हारी नेक अमल करने में जो तुमसे गलतियां हो गई हैं उसकी सजा से बचाने वाला है, महफूज रखने वाला है। अगर तुम जो है अपना ईमान और अमल ठीक रहो। अब यहां से खैरात की बात शुरू हो रही है। वह आती दिल कुर्बा हक, और जो करीबी रिश्तेदार हैं या जो खरीब के जो लोग हैं उनका हक दे दो। अब ये जकात जकात और सदकात की बात है। वल मिस्कीना वबना सबील, मिस्कीन किसको बोलते हैं? एक देखिए इसके रूट वर्ड पे सीन का नून पे अगर चले जाएं आप तो सकन का मतलब सुकून का एक जगह बैठे रहने वाले। इब्ने सबील कौन बोलते? सबील किसको बोलते? रास्ते, रास्ते पे चलने वाले। अब हमारे पास आमतौर पर तर्जुमा उसका मुसाफिर हो गया, तो मुझे ये बात समझ में आती है कि घर बैठे मांगने वाले और सड़कों पे फिर के मांगने वाले, जो रास्तों पे फिर के मांगने वाले हैं, ये दोनों को उनका हक दे दो। ये ज़कात और सदक़ात जो है ये दोनों को देना है। और फिर मिस्कीन का कुरान में एक डेफिनेशन ये आया, सूरह काफ इंशाल्लाह एक दो तीन हफ्ते के बाद शुरू हो जाएगा, तो उसमें एक बात आई कि मिस्कीन ऐसे लोग जो मेहनत करने के बावजूद उनकी आमदनी इतनी नहीं होती कि उनके जरूरियात पूरे हों, उनकी मदद करो, और जो फिर के मांगते हैं मुसाफिर जो हैं उनकी मदद करो। वला तुबज़िरु तबज़ीरा, और उड़ाते हुए फजूल खर्ची करते हुए दौलत मत उड़ाओ। अब इसके बारे में देखिए क्या आयतें आई हैं कि इन्नल मुबज़िरीना कानु इख्वान शयातीन, बेशक इन्ना बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतानों के भाई हैं। फिर यहां भी सोचना है कि शैतान क्यों नहीं बोले, शयातीन क्यों बोले? कुरान में ये एक एक लफ्ज नपातुल्ला है, यानी कई मुख्तलिफ बेजा तरीकों पे जो हम खर्चते हैं। शैतान एक, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में बात मिलती है, नमाज में भटकाने वाला एक शैतान अलग होता, नमाज में जो भटकाता है वो शैतान अलग होता। तो कई शयातीन हैं, हम सबके साथ शयातीन एसोसिएटेड हैं। तो फजूल खर्ची के कई तरीके हैं, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बेशक जो फजूल खर्ची करते हैं वो शयातीन के भाई हैं। वह कान शैतानु लि रब्बी कफूरा, और बेशक ये शैतान जो था वो आपके पालने वाले अल्लाह ताला का नाफरमान था, उनके हुक्म को नहीं माना, वो आदम अलैहि सलाम के सामने सजदा नहीं किया था, तो इसके भाई बनते हैं फजूल खर्ची करके। अब साहब फजूल खर्ची के उनवान पे तो देखिए, मैं जैसा बोलता हूं कि सूरह आल इमरान की 110वीं आयत है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो इंसानों के लिए निकाली गई है, जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाती है, बुराई से रोकती है और अल्लाह पे ईमान लाती है। ये मेरे नजर में हमारा इम्तियाजी निशान होना चाहिए था, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कि लोग हमारे बारे में बोलें कि नहीं साहब ये मुसलमान है, ये नेकी की तरफ बुलाते, बुराई से रोकते। हमारा आइडेंटिफिकेशन मार्क फजूल खर्ची है। हमारी शादियां देखिए आप जाके, अब तो खैर हर शादी में हो गया। एक बहुत दिन पहले कोई हमारे पहचानत के जनाने और मर्दाने के बीच में जो है मोतिया के फूलों की लड़ी थी पर्दे के लिए। ना भाई, आप मिडिल ईस्ट में कमा के आके तमाशे कर दे रहे हैं, यहाँ आपके मिडिल क्लास के यहाँ हिमाकत पसंद लोग जो है ये आपकी कॉपी करने जाते हैं, पैसे नहीं रहते, खर्च लेते। ये क्या फूलों की जो है चादर सजाई गई, خالی زنانے اور مردانے کے بیچ میں جو پردہ لگا ہے, ہم اپنے گریبان میں منڈی ڈالیں. میں خود اپنے بیٹیوں کی شادیوں کے بارے میں سوچوں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے ہم جو فضول خرچی ہوئی. ایک جو دولہے کے بیٹھنے کے پیچھے کا جو ایک پورشن ہے 25,000 روپے کا پورشن ہے, 25,000 میں بےچارے ایک غریب بچی کی شادی ہو جاتی ہے. پھر ہم لوگ جو خرچ رہے تو ایک ایسا اسٹینڈرڈ بنا دیے کہ صاحب اس میرج ہال میں اس سے کم خرچے کا ہم لیتے ہی نہیں کانٹریکٹ. تو سوچ کے دیکھیے کہ یہ ہماری بےچاری یتیم بچیاں, بیوائیں, ایسی غریب بچیاں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں, یہ ان لوگوں کا کون جواب دے گا؟ کون جواب دے گا؟ جیسا ایک سروے کے مطابق بتایا گیا ہے کہ حیدرآباد میں 35,000 لڑکیاں جن کی شادی ہو جانا چاہیے تھا ان کی شادی نہیں ہوئی. تو یہ 35,000 مسلمان مرد ذمہ دار ہیں جو کرنا چاہیے تھا لیکن نہیں کر رہے کیونکہ ان کے پاس سے پیسہ نہیں مل رہا ہے ان لوگوں کو. تو یہاں فضول خرچی کی بات آ رہی ہے. وہ اما توری زنہ انہم انہم ابتغاء رحمت من ربک ترجوہا فقل لہم قولا میسورا. اور یہ جو مانگنے والے ہیں اگر تم جو ہے ان سے اعراض کرو, تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں اور تم اپنے پالنے والے اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ کچھ رحمت تم پہ نازل کرے گا, تو کم از کم ان سے قولا میسورا, نرمی کی آسانی کی بات کرو, جھڑکو مت. دیکھیے یہ ہماری قسمت ہے کہ یہاں بٹھا دیا. تو سیڑھیوں کے پاس اگر نیچے بٹھا دیتا مانگتے ہوئے تو. میں ایک وقت رکشا میں آ رہا تھا, گن فاؤنڈری میں تھا میں, ہر طرف سے چواؤ ملتا, تو وہ رکشا والا چپ کڑ کڑ آ رہا تھا حیدرآباد کی زبان میں. تو میں بھی کچھ بول دیا ایسی, بھائی پہلے ہی بات کر کے آئے, تو ایک دم رکشا روک کے پلٹا اور بڑے فلسفے کی بات بولا جو میری زندگی چینج ہو گئی. بولا بٹھایا بول کے گانٹ رہا, کھینچاتا تو معلوم ہوتا تھا, فوراً اتر گیا. تو جب ایک کئی چیزوں کا احساس ہوا, ایک تو ہم اپنی رحم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بھول رہے ہیں, دوسرے اس کا فلسفہ بڑے بڑے پروفیسرز آف فلاسفی سے بہتر فلسفہ ہے اس کا, کہ اس کو یہ کانشیس ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کھینچا رہا ہے اور مجھے بٹھایا ہے. اگر مجھ سے کھینچاتا اور اس کو بٹھا دیتا تو میری کیا حشر ہوتی, میرا کیا حشر. تو یہاں یہ وہی بات آ رہی ہے کہ کسی کو مانگنے کی کیفیت میں رکھ دیا ہے, کسی کو دینے کی کیفیت میں رکھ دیا ہے. مانگنے والے کو مانگنے میں آزمایا جا رہا ہے, دینے والے کو دینے میں آزمایا جا رہا ہے. تو کس کی دولت دے رہا؟ مما رزقناہم ينفقون, ہم نے جو تجھ کو دیا ہے اس میں سے تو خرچتا ہے, تیرا ہے کیا؟ ارے تیری تو جان بھی نہیں ہے, تیری ہدایت نہیں ہے, تیرا علم نہیں ہے. پورا قرآن چھان ماریا, علم اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے, حکمت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی, ہدایت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی, رزق اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے, تو کون سی چیز ہے تمہارے پاس؟ تو اس چیز کو کانشیس رہو اور ان کو جو ہے نرم نرمی سے بات کرو. ولا تجل یدا کا مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطھا کل البسطی فتخدا ملوما محسورا. اور اپنے ہاتھ کو اپنے گردن سے مت باندھ لو اور اتنا بھی پوری طریقے سے مت کھول دو کہ تم آخر میں بہت ہی ملامت کرتے ہوئے عاجز و مجبور ہو کے بیٹھ جاؤ. یا میانہ روی, اعتدال, ماڈیسٹی, ماڈریٹ پننے کی بات آ رہی ہے کہ بھائی بخالت بھی مت کرو, کڑاؤ بھی مت, بیچ کا راستہ نکال. ایسی بخالت کر رہے ہیں کہ کھانے کو کھانا نہیں ہے, حالانکہ اچھا خاصا کما رہے ہیں, ایک ایک پیسہ جوڑ کے رکھ رہے ہیں, یہ بخالت بھی ہمارے بولے ایمان اور بخل ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا. حدیث ہے ایماندار آدمی بخیل نہیں ہوتا. اور یہ جو فضول خرچ شیطان کا بھائی ہوتا, تو اب یہ معلوم ہوا کہ ہم ایک بیچ کا راستہ نکالیں کہ نہ فضول خرچی کریں نہ بخالت کریں, اور ورنہ جو ہے بالکل ملامت کرتے ہوئے آگے تو مجبور بیٹھ جائیں گے. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, بے شک اللہ تعالی جس کا رزق چاہتے ہیں پھیلا دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں نپا تلا ایک مقدار سے دیتے ہیں. کہ میں کیا کروں, جتنا اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اتنا ہے. غریب ہوں تو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے غریب ہوں, امیر ہوں تو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے امیر ہوں, میرا ہے ہی کیا؟ یہ بات سمجھ میں آنا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں یعنی پھیلاؤ دیتے ہیں رزق میں, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں نپے تلے انداز سے. دیکھیے انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن جو ہے اسٹریٹن ہو گیا ہے. اب یہاں ایک بات سمجھ میں, اسٹریٹن نہیں, اسٹریٹن بھی جو ہے جمتا نہیں, खदर का मतलब जो है नपा तुला, अंदाजे से मेजर्ड आउट, बात को बेहिसाब देते। इनकम टैक्स वाले आके एसेस करने में परेशान है, कितनी दौलत है समझ में नहीं आ रहा हूं। बास का ऐसा है मालूम है, रोज के 30 रुपये कमा रहा हूं, खत्म, उसका बिल्कुल सेट है, 30 रुपीज नपा तुला है, उसमें से 20 रुपये का खाता 10 रुपये घर में लेके जाके देता है, इस तरीके से उसका बिल्कुल नपा तुला रिस्क है, ये अल्लाह ताला का इंतजाम है। इन्नहु काना भी इबादी खबीरम बसीरा, बेशक वो अपने बंदों की खबर रखता है और देखता है, उसको मालूम है किसको कितना देना है। बात समझिए आप, ऐसी अलग टप्पू जिसको बोलते हैं, उठा के किसी को अमीर और किसी को गरीब नहीं बनाया, उसको मालूम है किसको कितना देना है। एक फकीर को अगर दौलतमंद बना देगा, नमाजों को आता था वो नमाजें छोड़ देगा। एक दौलतमंद को अगर फकीर बना देगा तो हो सकता है बहुत शुक्र अदा करता था, ना शुक्रा हो जाएगा। देखिए एक बात, हमारा ईमान ये होना है कि इस वक्त मेरी जो हालत है, अल्लाह ताला सब में ज्यादा बेहतर जानते हैं, और इससे बेहतर हालत नहीं हो सकती, बेस्ट हालत है। हम कितने, हमारा इल्म कितना, हमको क्या मालूम कि क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है। बिल्कुल जो हालात हो रहे हैं बिल्कुल ये होना था, और हमारी जिंदगी के लिए ये हालात बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो जानता है किसको कितना देना है। वला तख्तुलु औलादुकुम खशियतिल इमलाक, और अपनी औलाद को गरीबी के डर से कत्ल मत करो। लोग समझते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ही था। मैं हाल हाल में BBC का एक प्रोग्राम देखा, उसमें हमारे पास ही साउथ इंडिया के पास फैमिलीज का बताया, बच्चियों को मार डाल रहे, उनका इंटरव्यू हुआ, बोले क्यों मारते, तुमको बुरा नहीं मालूम होता? तो बोले साहब इनको पाल के 17-18 साल 20 साल तक शादी के वास्ते पैसे जमा करना, शादी नहीं करना, ये मुसलसिल गम से बेहतर एक ही गम बोल के मार डालते। बोले तो अल्लाह ताला जवाब दे रहे हैं, क्या है, नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, हम उनको रिस्क देते हैं और तुमको भी रिस्क देते हैं, तुम्हारा क्या हक चलता है मारने का, औलाद को कत्ल करने का क्या हक है तुम्हारा। देखिए कुरान पे ईमान अगर आएगा तो ये हरकत नहीं होगी, रिस्क के वास्ते मार रहे ना तुम, रिस्क तो हम देते, तुम कौन है रिस्क देने, मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फ़िकून, हमने जो दिया है उसमें से खर्चो, तुम कहां से रिस्क देते, तो हम उनको भी खिलाते हैं तुमको भी खिलाते हैं। इन्ना क़त्लहुम काना खितअन कबीरा, बेशक इनका कत्ल करना एक बहुत बड़ी गलती है। वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा फ़सा सबीला, और जिना के करीब भी मत जाओ, ये बेशक जो है बेहयाई की चीज है और बड़ा बुरा रास्ता है। जिना क्या है, औरत और मर्द जो शादी शुदा है वो हरकत किसी और के साथ कोई मर्द या कोई औरत करे, ये जो है ये बिल्कुल ममानियत आई है, इसकी सजा आई है, 100 कोड़े मारने की संसार की, ये तमाम जो है सजाएं आई हैं कि सोसाइटी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। और फिर ये जो बात आ रही है कि वला तक़रबू, यानी जिना के करीब भी मत जाओ। देखिए कुरान में बात, जैसा कुरान की आयत पे परसों को साहब फोन कर रहे थे कि साहब वो शराब की आयत, शराब के साथ हराम का लफ्ज नहीं आया, इज्तनाब का लफ्ज आया। इज्तनाब का मतलब ये है अवॉइड करो, दूर रहो। वैसे जिना के लिए वला तक़रबू जिना, जिना के करीब भी मत जाओ। अब आप बोलेंगे साहब जिना हराम थोड़ी है, करीब मत को जाओ, बोले मतलब यह है कि ये ऐसी चीज है कि इसके करीब तक मत जाओ। इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि अपनी निगाहों को नीचे रखो, क्योंकि निगाह से हर बात शुरू होती है। कुरान का हुक्म है, सूरह गालिबन सूरह नूर में बात आ जाएगी कि कुरान का हुक्म है अपनी निगाहें नीचे, मर्दों से कहो कि अपनी निगाहें नीचे रखो, औरतों से कहो कि अपनी निगाहें नीचे रखो। जब निगाह नहीं पड़ेगी तो कोई बात ही नहीं होगी ऐसी, तो इसके करीब भी मत जाओ। वला तख्तुलु नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक, और अल्लाह ताला ने जिस जान का कत्ल करना हराम किया है उसको कत्ल मत करो, सिवा इसके के हक पे रहकर। यानी मतलब यह है कि अगर कोई कातिल है तो इस्लामी हुकूमत में उसका कत्ल हो जाएगा, हम कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। इस्लामी हुकूमत की बात है, हम अपने हाथ में कानून नहीं ले सकते, तो कत्ल को हराम किया गया है। वमन खुतिला मजलूमन फकत जालना ली वली सुल्तानन फला युस्रिफु फिल कत्ल, और जो जुल्म से कत्ल किया गया है, बिला वजह के कत्ल किया गया है, तो उनके वारिसों को अल्लाह ताला ने अथॉरिटी दी है, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इस अथॉरिटी में इस वक्त मत करो, ज्यादती मत करो। इन्नू काना मंसूरा, कि तुम्हारी मदद की गई। जैसा भाई किसी के वालिद साहब का कत्ल हो गया, अब उनकी इनकम थी समझिए कि महीने को 2000 रुपये, तो जो साहब फतल कर दिए उन्हें कुछ ऐसा डिपॉजिट कर दिए कि महीने को 2000 रुपये उनको फैमिली वालों को मिल जाए, बात समझ में आ रही। अब क्योंकि कुरान आपकी मदद कर रहा है, यानी ये जो खून बहा जिसको बोलते हैं, ब्लड मनी जिसको बोलते हैं, अब आप बोले कि बाबा की तो जो है 2000 थी, पैसे वाले हैं, 5000 5 लाख क्यों नहीं मांगना है इनसे। तो बोले नहीं साहब, मंथली हमारे को जो है 5000 इनकम का आप इंतजाम कर दीजिए। तो मरने वाले की आमदनी सिर्फ 2000 थी, आप क्योंकि कुरान से आपको हेल्प किया गया है, आप जो है 5000 का तकाजा कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला उसको भी मना कर रहे हैं कि इस तरीके से एक्सप्लॉइट मत करो क्योंकि तुम्हारी मदद की गई। एक्सप्लॉइटेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई किसी को एक्सप्लॉइट ना करे। वला तकरबू माल अल यतीमी इल्ला बिल्लती हिया अहसनु हत्ता यबलुगा अशुद्दहु, और यतीम के माल के करीब भी मत जाओ सिवाय इसके के अच्छे तरीके से, यहां तक कि वो अपनी जवानी को पहुंच जाए। देखिए यतीम के माल की बड़ी बात आई है, अब कोई अमीर आदमी के पास यतीम है तो वो तो खैर उसको अपना मुआवजा लेने की भी जरूरत नहीं है, उसको खिलाने पिलाने का जो है जो भी वाजबी खर्चा होता है उसमें से ले ले। अब बाज़ लोग ऐसे हैं जो यतीम को देखने के लिए उनको भी जो है साथ अपने पलना पड़ता है, तो बिल्कुल रीजनेबल तरीके से उनमें से कुछ ले ले। अब जैसा सूरह बकरा में पहले हम पढ़ चुके हैं, वहाँ बात आई है कि बाज़ लोग यतीमों का माल जल्दी जल्दी खा जाते हैं डर के कि ये बड़े होकर फिर क्लेम करेंगे, तो इन लोग बड़े होने से पहले इनका माल खा लें। बड़े हुए तो बोलना मियाँ तुम्हारी तालीम का खर्चा ऐसा हुआ वो हुआ, चलो तो ऐसी बात मत करो। अब ये बड़ी हमारी खास माशरे की बात आ रही, वो औफू बिल अहद इन्नल अहदा काना मसूला, और अपने वायदे की पाबंदी करो क्योंकि वायदों की पूछ होगी। हो आ रहा हूं कल, नहीं आया बेटा कपा दिए दिन भर, पूछ होगी इसकी, ऐसा नहीं छूटेंगे। उसके बेचारे के कई इंपॉर्टेंट काम आते, वो छोड़ के आप आ रहे हैं, आपके इंतजार में बैठा हुआ था। फिर एक वायदा जो है दफ्तर को वक्त पे जाने का एक वायदा है, स्कूलों को वक्त पे जाने का एक वायदा है, कर्ज लिए तो वापसी करने के कुछ वायदे हैं, पंक्चुअलिटी के वायदे हैं, शादी ब्याह के वायदे हैं, आप लिख दिए कि इंशाल्लाह मेरी बेटी का निकाह जो है 6:30 बजे होगा, ये भी वायदा है। लोग आके बैठे हुए हैं अपने जरूरी काम, भाई भाई कई डॉक्टर्स हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, कई वकीला हैं जो मौकिला उनके दफ्तरों में बैठे हुए हैं, पूरों को रोक के रखे हैं, दूल्हे मियां 9:30 को आ रहे हैं, ये वायदे की पूछ हो गया। देखिए यहां ये बात समझने की है कि अगर हम इन तमाम चीजों पे अमल करते तो आज हमारा इम्पैक्ट ही अलग होता, दूसरों पे हमारा इम्पैक्ट ही अलग, हमारा इम्पैक्ट कुछ उल्टा हो रहा है। जैसा मेरे से कोई एक हमारे गैर मुस्लिम दोस्त पूछे थे कि साहब इज इट ऑस्पिशियस इन मुस्लिम्स टू पोस्टपोन द टाइम ऑफ मैरिज एज इट इज ऑस्पिशियस विद अस टू हैव द मैरिज ऑन डॉट। 6:20 बोले तो 6:20 में होता हूं, हमारे पास 6:30 बोले तो आज के बोले थे सर, 6:30 बोले कभी भी होंगे, सुबह तक होते, ये हमारा मामला है। तो वायदों की भी जो है पूछ होगी। वो ऊफुल कैला इज़ा किल्तुम, और जब तुम नापो तो पूरे का पूरा नाप दो, वज़ीनु बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, और सीधे तराजू से तोलो। देखिए कोई फील्ड नहीं छोड़ी गई, बिजनेसमैन को भी जो है हुक्म आ गया नाप तोल में कमी मत करो, पूछा जाए भाई आपसे जो खरीद रहा वो नहीं देख रहा लेकिन ऊपर वाला बराबर देख रहा है। आप अगर इस बात का शऊर रखते हैं तो फिर कांटा इधर उधर नहीं होगा, बिल्कुल जो है ईमानदारी का। उसकी वजह बता रही ज़ालिकुल खैरु व अहसनु तावीला, ये बेहतरीन चीज है और नतीजे के लिहाज से भी बहुत बेहतरीन इसका नतीजा निकल जाए, माशरा ही अच्छा हो जाएगा। आजकल क्या है, पूरा धोखे ही धोखा है, ये धोखे का माशरा, कोई किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। तो ये सब ठीक हो जाएगी। फिर ये हम लोगों के लिए बड़ी खास आयत आ रही, वला तख्फू मा लैसा लका बिही इल्म, और ऐसी चीज के पीछे मत पड़ो जिसका तुमको इल्म नहीं है। कुरान हदीस में है तो उस पर अमल होगा, कुरान हदीस में नहीं है तो फिर उस पर अमल नहीं है, बात बिल्कुल क्लियर है। देखिए हमारे खानदानों में बात चीजें चल रही हैं, जरा पूछ रहे हैं किसी से कि भाई ये क्यों कर रहे हैं, तो उसका जवाब ये होता भाई अब फैमिली ट्रेडिशन है, दादा परदादा से यार आज तक नहीं पूछे, आप कौन उसके पूछ रहे हैं आप सामने के बच्चे, ऐसी बात आती है। तो ये हम रिसर्च करें कि भाई ये कुरान की किसी आयत में हुक्म आया है इसका, नहीं आया है, कोई ज़ईफ़ से ज़ईफ़ हदीस इसमें आई है, नहीं आई है। जिन बुजुर्गों के नाम पे आप इस किस्म की चीज करते हैं उनके तालीमात में कहीं ऐसा मिलता है, नहीं मिलता है, کہ کون بولے کرو بول کے آپ. تو قرآن یہ حکم آ رہا ہے کہ وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, یعنی ایسی چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تم کو علم ہی نہیں ہے, اس کو اس کی اتباع مت کرو. اِنَّ السَّمَعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا, یعنی بے شک تمہارے کان, تمہاری آنکھ, تمہارے دل و دماغ, ہر ایک سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. سنا تھا ایسی بات, دیکھا تھا ایسی بات, سوچا سمجھا تھا ایسی بات, کس اتھارٹی پہ تو نے ایسا کیا؟ پھر اور ایک مطلب یہ آتا کہ کان سے کیا سنا پوچھا جائے گا. قرآن سنا سمجھیا سنتے بیٹھا تھا, تو سبھی کے ساتھ ہے ہمارے. اذان ٹی وی پہ اذان اوور لیپ ہو رہی ہے, حیا علی الصلاۃ وہاں بول رہے ہیں, یہاں بولے ارے وہ میں گئے تھا کہ مر گئی تو کیسا ہوئیں گا, بیمار ہے ہاسپٹل میں پورے گھیرے ہوئے ہیں, ایسا جیسا اپنے رشتے دار آئے ہیں. یہ ہے گھر گھر کی بات ہے. تو ایک مطلب اس کا یہ ہوتا کہ دیکھو تم کیا سن رہے ہو پوچھا جائے گا, تم کیا دیکھ رہے ہو پوچھا جائے گا, تم کیا سوچ سمجھ رہے ہو پوچھا جائے گا, ہر ایک کے بارے میں ان کا سوال ہوگا. بلا تمشی فی الارض مرحا, اور زمین پر اکڑ کے مت چل. اور پھر انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے نہ تو جو ہے پہاڑ کی لمبائی تک پہنچ سکتا ہے. پھٹ جائیں گا اگر زیادہ جو ہے تلنے کو جائیں گا تو جو ہے پھٹ جائیں گا سیدھا, نہیں ہے. ان کے ساری چال سے بھی ان کے ساری ظاہر ہو کہ بھائی ہاں یہ لوگ اپنے آپ کو بالکل ہی ماڈسٹ سمجھتے ہیں. دیکھیے یعنی چال سے آدمی آپ کا جو پہلا انٹروڈکشن ہوتا کسی سے آپ کے ایکسٹرنل رویے سے ہوتا. آپ بالکل جو ہے اس طریقے سے ہاں بولیے جناب بولے تو انہیں اندر بہت اچھا ہوئے گا, لیکن یہ جو رویہ ہوتا ہے ایکسٹرنل, تو اس لیے بول رہے ہیں کہ جو ہے زمین پہ اکڑ کر مت چل. تو نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے, تو پھر کیوں اکڑتا ہے؟ کلو ذالی کا کانا سیہو عند ربک مکروہا, ان تمام چیزوں کی جو برائی ہے آپ کے پالنے والے اللہ تعالیٰ کے پاس ناپسند ہے. اب یہ جو 14-15 احکامات آئے ہیں ان کی تمام برائیاں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ناپسند ہیں. ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ, اور یہ حکمت کی وہ باتیں ہیں جو آپ کو جو وحی کی جاتی ہیں اس میں سے یہ تمام حکمت کی باتیں ہیں. یہ حکمت کی بات کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ حکمت وزڈم کی بات ہے, دانائی کی بات ہے. حکمت فیصلے کی بات ہے, اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے. حکمت میں احکامات آ جاتے ہیں, یہ احکامات ہیں. حکمت میں استحکام ہے, فارمنیس ہے. اس میں فارمنیس ہے قرآن کا حکم, نہ اب تک بدلا نہ بدل سکتا, نہ کوئی بدل سکتا ہے. تو یہ حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے اوپر وہی وہ کرتے ہیں. پھر جو اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بول رہے ہیں اسی پہ بات ختم ہو رہی ہے. ولا تجل ما اللہ الہن آخرا فتلقا فی جہنما ملوما مدھورا, اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا مت بنا, ایسا نہ ہو کہ تو جہنم میں ملامت کرتے ہوئے ٹھکرائے ہوئے پھینک دیا جائے. اللہ کے ساتھ سوا جو ہے کسی اور کو الہ مت بنا. دیکھیں ہمارا سوچو سب میں بڑا الہ ہے وہ اندر بیٹھا ہے. قرآن میں دو مقامات پہ بات آئی ہے کہ انہوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا الہ بنا رکھا ہے, انہوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا الہ بنا رکھا ہے. لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. تو جس دن ہم لا الہ الا اللہ کو کمٹ کریں گے, مانیں گے, اس دن اپنی خواہش کو بھی توڑ کے پھینک دیں گے. آج سے میری کوئی خواہش بھی کمٹمنٹ وہ ہے. دیکھیے کلمہ ایک کمٹمنٹ ہے. کل ہی کسی سے کوئی بات ہو رہی تھی کہ صاحب یہ فلانا ایسا عمل نہیں کرتا ہوں نہیں. دیکھیے عمل کے لیے کمٹ, آپ ایک کمٹ کر لیجئے کہ انشاءاللہ میں روز 5 نماز پڑھوں گا. کمٹمنٹ کریں گے تو پھر نماز ہوں گی, کمٹمنٹ ہی نہیں. اتفاق سے مسجد کے سامنے سے گزر رہا تھا, اتفاق سے ایک دوست مل کے ڈھکل کے اندر کر دیا. یہ نہیں ہوتا کمٹمنٹ. تو یہاں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دیکھو سوائے اللہ کے کسی اور کو خدا مت مانو, کوئی اور کو اتھارٹی مت مانو. اب ہمارے بس میں جو اصل اتھارٹی ہے وہ ہماری خواہش نفس, ہمارا ڈیزائر جس کو بولتے. تو اپنے ڈیزائر کو بھی مت مانو سوائے اللہ تعالیٰ کے. وَلَا تَجَلْ مَا اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْخَا فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا. اب یہاں جو ہے ایک سمری کے طور پہ میں یہ لکھ دیا ہوں, یہ احکامات کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے, والدین کے بارے میں ہے, خیرات کے بارے میں ہے, فضول خرچی کے بارے میں ہے, اعتدال کے بارے میں ہے, بچوں کو قتل کرنے کے بارے میں ہے, زنا کے بارے میں ہے, قتل और यतीम और वायदों की पाबंदी, नाप तोल, जहालत में अमल करना और फखर और शिर्क, यानी ये 14-15 अहकाम एक जगह पे आ गए। अब आगे बढ़िए। तो क्या तुम्हारे पालने वाले अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए बेटे बनाए और खुद जो है मलाइक में से बेटियां क्यों नहीं? अब ये जो मुशरिक थे वो लोग ये बोलते थे कि ये मलाइक जो है वो अल्लाह ताला की बेटियां हैं, नाऊज़ु बिल्लाह, यानी अल्लाह ताला को बेटियां और खुद अपने को बेटे, बेटी होती तो जो है मुंह लटका लेते थे। तो अल्लाह ताला इनसे सवाल कर रहे हैं कि इन का फैसला सुरान है कि इन्नकुम लतकूलूना कौलन अज़ीमा, बेशक तुम जो है एक बहुत बड़ी सख्त बात बोलते हो कि अल्लाह ताला की बेटियां बनाते हो, बेटे बनाते हो, बहुत सख्त बात बोलते हो, बुरी बात बोलते हो। वलकद सर्रफना फी हाज़िल कुरानी लियज़्ज़करू, और हमने इस कुरान में बातों को मुख्तलिफ तरीके से फेर फेर के, पलटा पलटा के, मुख्तलिफ तरीकों से समझाया है ताकि तुम उसको याद रखो या ताकि तुम इसे नसीहत हासिल करो। फिर फिर के समझाने की क्या बात है? एक साहब पूछे कि भाई साहब ये गुलकुंडा होटल कहाँ है? मैं इश्तिहार नहीं दे रहा हूँ, एकदम नाम आ गया। अब एक साहब बोले साहब आप लकड़ी के पुल से निकलिए, ऐसा नहीं समझे। अच्छा फर्ज कीजिए आप मेहदीपट्टनम से आ रहे हैं, उसी बात को आप दूसरे तरीके से समझा रहे हैं। ये पूरा कुरान भरा हुआ है चीजों से, हम नोटिस नहीं कर रहे, इधर से पता नहीं समझ रहे हैं। अच्छा मेहदीपट्टनम से आ रहे हैं आप, अच्छा आप एसी घाट से आ रहे हैं, बाजार घाट से निकल के आ रहे हैं, आप मुख्तलिफ तरीकों से बता रहे हैं। कैसे फर्ज कीजिए उधर से आ रहे हैं आप, फैसलाबाद से आ रहे हैं, मगर पता एक ही का बता रहे हैं। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि देखो कुरान में हम बातों को मुख्तलिफ तरीके से पलटा पलटा के, फिरा फिरा के समझा रहे हैं ताकि तुम याद रखो। अकीमुस सलाह व आतुज़ ज़का, कितने वक्त आए बार बार वही बात बोल रहे हैं? अरे एक वक्त बोल दिया ना, अभी समझ नहीं, ये बार 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 याद दिलाने की चीज है। 650-700 पेजेस की किताब है ये, एक सिटिंग में खत्म नहीं होती। जब खोलेंगे तो बार अहम मसले उसमें आएंगे। रिपीटिशन का मकसद समझना है, क्यों रिपीट किया गया है। हम फिजिक्स की किताब पढ़ते, फिजिक्स की किताब में हीट के चैप्टर में हीट के चीजें आगे, लाइट पढ़ रहे तो लाइट में हीट की बात रिपीट नहीं होती उसमें, वही कहा वही आ गया। ये इंसान की लिखी हुई किताब है, ये खालिक कायनात अल्लाह ताला की लिखी हुई किताब। मालूम है कि एक सिटिंग में नहीं पढ़ेंगे ये लोग, बल्कि हुक्म ये है कि उतना ही पढ़ो जितना आसानी से समझ सकते हो। अगर नींद आने लगे, समझ नहीं पा रहे तो बंद करो, रख दो। देखिए पढ़ाई के मामले में भी यही है, फिजिक्स है आपको समझना है, अगर नींद आ रही बंद करके रख देना, नहीं तो समझ लो खाली अंग्रेजी पढ़ के क्या करते हो, उसकी मसला समझना है अंदर का। तो मुख्तलिफ तरीके से जो हम फेर 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 के कुरान को समझाते हैं। वह माँ यजी तो हूँ मिल रहा नफूरा, और ये जो काफिर है इनमें सिवाय नफरत के और कोई चीज नहीं बढ़ती, यानी हम मुख्तलिफ तरीके से समझा रहे हैं लेकिन इनमें सिवाय नफरत के और कोई चीज नहीं बढ़ती। खुल लौ काना माँ हूँ आली हतों कमा यकुलू नाइजन लपतहू इला दिल अर्शी सबीला, और जैसा कि ये लोग कहते हैं अगर अल्लाह के साथ और भी खुदा होते तो फिर ये पूरे के पूरे अर्श वाले पे हमला करते, अर्श पर कब्जा हासिल करने के लिए। कभी ऐसा सुना है, कभी ऐसा देखा है, कहीं इंतशार है कि क्या यूनिफॉर्मिटी है? हाँ बिलियंस ऑफ हेवनली बॉडीज, बिलियंस ऑफ ऑर्बिट्स, कहीं समझ में नहीं आया, कोई पुलिस वाला नहीं है, कहीं टक्करा नहीं हो रहे, कहीं एक्सीडेंट्स नहीं हो रहे, कहीं लेट नहीं हो रहा, फलाना प्लैनेट फलाने दिन दिखना बोले तो फलाने दिन दिख रहा, फलाने तारों का झुरमट फलाने दिन दिखना बोले तो दिख रहा, लूनर एक्लिप्स सोलर एक्लिप्स आपके कैलेंडर में लिखा हुआ है बराबर, वो टाइम पे वो वक्त पे जो है बराबर सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण हो रहा है। अगर कई होते तो तमाशा हो जाता था। देखिए एक बात, एक बिल्कुल लॉजिक है, अगर कई खुदा होते तो तमाशा हो जाता था सारी कायनात में, एक ही खुदा है, ये बात को मानो। अब ये बड़ी खास आयतें आ रही हैं, सुभानहू व तआला अम्मा यकूलूना उलूवन कबीरा, ये अल्लाह ताला के बारे में ये जो लोग बयान करते हैं उससे अल्लाह ताला पाक हैं, बरी हैं, डिफेक्टलेस हैं, बहुत ही बहुत बुलंद है। हम इमेजिन नहीं कर सकते अल्लाह ताला कितने बुलंद है ये जो बेहूदगी की बातें कर रहे हैं। सब्बिहु लहु समावाती सबा सबौ वल अर्दी व मन फीहिन्ना, यानी सात आसमान और जमीन और जो कोई इनमें है अल्लाह की तस्बीह बयान करता है या करती है। अब तस्बीह के माने समझना जरूरी है कुरान से। سورہ مزمل کے ساتھ میں آیت ہے ان لکا فی النہاری سبحا طویلا. دیکھیے سمجھیے بڑی خاص بات ہے, بہت سے لوگ مس کر رہے ہیں تسبیح کے معنی. قرآن کو قرآن سے سمجھنا ہے, تسبیح کو قرآن نے کیسا سمجھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بے شک دن کے وقت آپ کو سبحا طویلا, بہت لامبی سبھا مصروفیت ہوتی ہے. سبھا کا مطلب کیا ہوا؟ مصروفیت. ہاں تو ایک تو مطلب تسبیح ہے, سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا, اس میں کوئی اعتراض نہیں, تسبیح کے بھی معنی آ رہے ہیں. قرآن کو قرآن سے اگر آپ سمجھنے بیٹھیں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ سات آسمان اور زمین اور ان میں جو کوئی ہیں وہ آپ کے احکامات کی پابندی میں مصروف ہے. میں قرآن سے قرآن کو سمجھانے کی کوشش کروں, تسبیح بیان کرتی ہے. میں آپ کو مثال بھی دے دیتا ہوں کہ صحابہ نے شاید پہ غالباً پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہر چیز کیسے تسبیح بیان کرتی ہے؟ آپ نے ہاتھ میں مٹی لی اور صحابہ کے کان پہ لگائی, اسے آواز آ رہی تھی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا, میں اٹھایا تو نہیں آئیں گی. جس کھجور کے پیڑ پہ آپ ٹیکا لے کے جو ہے خطبہ دیتے تھے ممبر بننے کے بعد, جب آپ وہ چھوڑ دیے تو وہ ممبر سے رونے کی آواز آتی تھی غم میں جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیکا دینا چھوڑ دیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے, یہ ایک بات ہے. یہ جذباتی انٹرپریٹیشن ہے, ایک انٹلیکچوئل انٹرپریٹیشن اس کا ہونا ہے, آج کے دور کے لحاظ سے ایک انٹرپریٹیشن ہونا ہے کہ قرآن کے خلاف نہیں جانا. سبحا طویلا کو قرآن نے سمجھایا کہ دن میں آپ کو مصروفیت ہوتی ہے, تو سات آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی میں مصروف ہیں. اچھا پھر اس کے بعد میں کہا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ, یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کی تسبیح میں اس کی تعریف کرتے ہوئے مصروف نہیں ہے, لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے سمجھا دیا. اب یہ مصروفیت کی اگر آپ مانے لیں تو ہم ان کی مصروفیت کو بھی نہیں سمجھ سکتے. چلیے ایک چھوٹی سی مثال لیں, گھاس. ہم گھاس کو کیا بولتے ہیں؟ ارے ان کو گھاس بھی نہیں ڈالتے, اتنی حقیر چیز سمجھتے ہیں. آج اگر دنیا سے گھاس نکال لی جائے تو پوری جغرافی بدل جائے دنیا میں, کئی بکریاں گائے بھینس مر جائیں اگر خالی گھاس. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ تو اب یہ معلوم ہوا کہ تسبیح کیا ہے, اپنے وجود کے مقصد کو پورا کرنا, یہ تسبیح ہے. ٹو فلفل دا ڈیوٹی اسائنڈ ٹو یو. پنکھے کا کام کیا ہے؟ ہوا دینا, یہ اس کی تسبیح ہے. لائٹ کا کام کیا ہے؟ روشنی دینا, یہ اس کی تسبیح ہے. اس کا کام کیا ہے؟ آواز کو بڑھا کے پہنچانا, یہ اس کی تسبیح ہے. پھر میری آپ کی تسبیح کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میری آپ کی تسبیح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہیں, یہ آپ کی میری تسبیح ہے. سبحان اللہ الحمدللہ اپنی جگہ پہ, بس میں بیٹھے ہیں آپ, کچھ بھی کرنا نہیں ہے, تسبیح پڑھ لے رہے ہیں, کوئی نہیں روک رہا اس سے. لیکن تسبیح کا یہ مفہوم, انٹلیکچوئل مفہوم سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ایوری تھنگ ہیز بین کریٹڈ فار اے پرپز, اور ایوری تھنگ کریٹڈ از پرفیکٹ فار دا پرپز فار وچ اٹ ہیز بین کریٹڈ. یعنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کمال تک پہنچا کے پیدا کیا ہے, جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا ہے. ایک بات ہے, اے پرفیکٹ گاڈ cannot have an imperfect creation. بات سمجھیا, اللہ تعالیٰ کامل ہیں, پرفیکٹ ہیں, ان کا کریشن بھی پرفیکٹ ہے. ہم اگر مقصد وجود اگر سمجھیں برابر, ایک شرابی ہے, اس کا وجود ہی شراب کو بدنام کرنا ہے. وہ اپنے مقصد کے لیے بہترین پیدا کیا گیا ہے, ہم وہ نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں شرابی کو. شراب کی ممانعت آئی ہے قرآن میں, پی کے مہوری میں پڑا ہوا ہے, اپنے مقصد کو پورا کر رہا ہے, آپ کو پیغام دے رہا ہے کہ تمہارے قرآن میں جو شراب کی ممانعت آئی ہے اس کے خلاف اگر تم جا کے شراب پیو گے تو اس طریقے سے میں پڑھا تم پڑے رہو گے. پرفیکٹ ایگزامپل ہے, ہم یہ اس کو نہیں دے. تو تسبیح کا مطلب کیا ہوا کہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کی تعمیل میں مصروف رہنا ساری کائنات کی تسبیح ہے, اور ہماری تسبیح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یعنی قرآن پہ ویسے ہی عمل کرنا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہ کان حلیمن غفورا, بے شک اللہ تعالیٰ حلیم ہے, درگزر کرتے ہیں. ایک چھوٹا بچہ ہے آ کے چپ کان میں جو ہے کچھ پر وہ کر رہا ہے, دیکھا میں بچہ ہے درگزر کر رہا ہوں, بچہ ہے, ایک مارا تو بیٹھ جائیں گا وہ. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے سے معاملے کرتے ہیں, درگزر کرتے ہیں, چھوڑو, مجبور ہیں, کمزور ہیں, چھوڑو, کمزور پیدا کیے گئے ہیں, چھوڑو, حلیم درگزر کرتے ہیں, غفور ہیں, سزاؤں کو جو ہے درگزر کرتے ہوئے سزاؤں کو اس سے بچا لیتے ہیں.